ओम शांति। डॉक्टर निरंजना बहन तो हम सबके साथ ही हैं तीन दिन से, तो इसलिए आप सबके लिए आप पुराने हो गए। रोज ही आपसे हर क्लास में मिलते हैं और आपका बहुत ध्यान रखते हैं, और मैं भी हम आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो ये होते हैं, तो फिर मैं निश्चिंत होती हूँ, मैं होती हूँ तो ये निश्चिंत होते हैं। तो आज इनको भी निवेदन किया कि आप भी जरूर एक क्लास लें भाई बहनों की। तो आज का विशेष टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य फरिश्ता। तो डॉक्टर निरंजना बहन तो डबल डॉक्टर हैं, लौकिक में भी आप गवर्नमेंट जॉब में रहे एज ए मेडिकल ऑफिसर और 99 में रिटायरमेंट ली, और बाबा से आप पिछले 45 वर्षों से जुड़े हुए हैं, ज्ञान में हैं, और 42 ईयर से आप यज्ञ सेवाओं में समर्पित हैं। साथ साथ लौकिक जॉब भी करते रहे और साथ साथ यज्ञ सेवाएं भी करते रहे। बड़ौदा में ही आपका लौकिक अलौकिक जन्म स्थान और कार्यस्थल कर्म भूमि जन्म भूमि बड़ौदा ही है, और उसके साथ साथ आप देश विदेश में सेवाएं दे रहे हैं, ऑल इंडिया में भी कहीं भी जरूरत होती है, प्लस विदेश अमेरिका लंदन मॉरिशियस अनेक देशों का आपने भ्रमण किया है, और हेडक्वार्टर के आप नजदीक बैठे हैं इसलिए दादी दीदियों को भी जब जब जरूरत होती है तो आपको बुला लेते हैं। अभी भी इस भट्टी के लिए विशेष मुन्नी दीदी ने आपको विशेष बुलाया कि इस भट्टी का एक इंचार्ज के तौर पर इसको संभालें और इसके पूरे संचालन का ध्यान रखें। तो आप बहुत कुशल संचालन हमारी इस भट्टी का कर और करा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स को अच्छे अच्छे योगियों को हम सबके बीच में ला रहे हैं और उनके अनुभवों का हम लाभ ले रहे हैं, इसलिए हम बहन जी का विशेष विशेष डबल स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी हम सुनेंगे आज के विषय पर, क्योंकि आज का दिवस ही फरिश्ता दिवस है, तो आज जितनी भी क्लासेस होंगी वो कहीं ना कहीं फरिश्ता स्थिति को बनाने के लिए ही कुछ मार्गदर्शन हम सबको मिल रही है, उसी कड़ी के तहत अभी हम सुनेंगे डॉक्टर निरंजना बहन को।
ओम शांति। फरिश्ता शब्द हम सबके लिए बहुत नजदीक का लगता है, तो फरिश्ता कैसा होता है? हाँ, क्या हवा में उड़ता है और कैसा होता है? एकदम लाइट होता है और कैसा होता है? हाँ, क्या चमकदार, वाइट चमकदार लाइट वाला होता है, हड्डी मांस नहीं होता है उसमें। बहुत अच्छा। और क्या विशेषता होती है फरिश्ता की? हाँ, वो तो बनने के लिए, पर फरिश्ता है, जस्ट इमेजिन कीजिए फरिश्ता आपके सामने, फरिश्ता है मतलब ऊपर उड़ने वाला होता है, हवाओं में होता है उड़ने वाला। हाँ हाँ, एक सेकंड में कहीं भी आ जा सकता है, ठीक बात है, प्रकाश की तरह है। हाँ, शब्द से नहीं बोलते, इशारे से बात करते हैं, है ना। फरिश्ता जब मिलता है, आपने किसी ने फरिश्ता देखा है? नहीं, मतलब किसी को साक्षात्कार हुआ हो, देखा है फरिश्ता? जिसको कहा साक्षात्कार हुआ हो फरिश्ते का हाथ ऊपर करे। हाँ, बहुत अच्छा। तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है ब्राह्मण जीवन का फरिश्ता बनना, हमारा इतना ही पुरुषार्थ है। ब्राह्मण बाबा बनाता है और फरिश्ते से देवता अपने आप बनते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ कितना रहा? ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, वो हमारा पुरुषार्थ है ना। बाबा ने जब हमें अपना बनाया तो क्या कहा? बच्चे तुम जैसे हो वैसे मेरे हो, ये नहीं कहा तुम पढ़े लिखे होने चाहिए, ये कास्ट के होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, ना, जैसे हो वैसे मेरे हो। कोई कितना भी व्यसनी है, अवगुण वाला है, कैसा भी है, पर क्या कहा, तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। बाबा ने अपना बना लिया। अब बाबा फिर क्या कहते हैं, साथ ले जाने के लिए क्या कहते, तुम जैसे हो वैसे ले जाऊंगा, ऐसा कहते हैं ना? ये नहीं कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे समान फरिश्ता बनना पड़ेगा, बाप समान फरिश्ता बनना पड़ेगा। तो वो हमें करना है। बाबा ने हमें अपना बना लिया, उनका काम पूरा हो गया, अब हमारा काम शुरू हुआ है क्या, कि हमें अभी पुरुषार्थ करना है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का। तो जैसे आप सभी को पता ही है कि फरिश्ता क्या है, कैसा होता है, विशेषता क्या है, वो सब पता है। अब हम कैसे बने वही हमें सोचना है। तो पहली बात जो आप सभी ने बताई कि भाई जो फरिश्ता होता है ना, वो उसका फर्श से अर्थात इस देह रूपी फर्श से कोई रिश्ता नहीं। हमारा स्वयं का अपने ही देह के साथ कोई रिश्ता ना हो, आप सोचिए उस स्थिति के लिए हमें स्वयं का, स्वयं के अस्तित्व का, है ना, गहराई से चिंतन करना होगा। हम आज फास्ट बातों में, शब्दों में नहीं जाएंगे, परंतु हम अपने आप के लिए सोचेंगे कि मैं कौन हूं आखिर, मैं कौन हूं, वो तो आप सबको पता है, तुरंत जवाब देंगे मैं आत्मा हूं, है ना। तो उस बारे में सोचना है कि मैं आत्मा, व्यक्तिगत रूप से हम सभी हर एक व्यक्तिगत रूप से आत्मा है ना। तो मैं आत्मा, अपने आप को हम सोचे कि मैं आत्मा, इस जन्म की बात पहले सोचते हैं, तो मैं आई तो कैसे आई आत्मा, अपने आप में सोच लीजिए, मैं आई आत्मा इस जन्म के पहले वाले जन्म से, है ना, इस जन्म से पहले वाले जन्म से मैं आई आत्मा, है ना, आत्मा रूप में। तो फील कर सकते हैं हम, ये जब शरीर नहीं था उसके पहले मैं आई आत्मा, तो कैसे आई होंगी। कभी कभी मैं ऐसा चिंतन करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं आई होंगी तो कैसे आई होंगी। हाँ, कहाँ आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, है ना। तो हम आए तो थोड़ा तो रुके होंगे माँ के गर्भ के बाहर समझा। तो अपने आप को सोचिए कि मैं आत्मा कैसे आई, और आकर के फिर सबसे पहले मैंने प्रवेश किया। तो बाबा ने कहा कि ये अपने आप को महसूस करना है कि मैं जब आई इस दुनिया में, इस धरा पर आई तो कैसे आई, वो आत्मस्वरूप को महसूस करना है। और फिर हम जब आए इस दुनिया में, जन्म लिया, तो हम किसी को पहचानते थे, वो महसूस करना है कि हम आए, किसी को नहीं पहचानते, न माँ को न बाप को, है ना। बाद में पहचान दी जाती है कि तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पापा है, फिर पापा मम्मी ये वो फलाने दिखना सब शुरू हो जाता है। तो इन बिटवीन कम से कम आत्मा जब एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो भी आत्म स्वरूप की महसूसता में है, क्योंकि सब कुछ छूट जाता है, देह और देह के संबंध सारे क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और फिर हम सभी आत्माएं नए सिर, हर एक आत्मा व्यक्तिगत रूप से, आप सोचिए, है ना, हर एक आत्मा व्यक्तिगत रूप से, ये इतना बड़ा जो ड्रामा है, नाटक चल रहा है इस सृष्टि पर, ये सृष्टि रंगमंच है और इसमें इतना बड़ा विशाल नाटक चल रहा है, और हम चलो ब्राह्मण परिवार की ही बात सोचते हैं तो इतना विशाल हमारा ब्राह्मण परिवार है, उसमें एक एक आत्मा का अपना अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत पार्ट है ना। किसी का किसी से है, भले हमारा दैहिक संबंध भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, पर फिर भी आप सोचिए विशेषता है कि हर आत्मा का अपना अपना व्यक्तिगत पार्ट। तो हमें उस रूप से अपने आप को महसूस करना है कि मैं, जब से हम परमधाम से आए, एक बार जब मैं ऐसा चिंतन कर रही थी, यूजुअल वे में हमें नहीं लगता है, पर एक बार जब इस चिंतन कर रही थी तो मैंने सोचा कि हम परमधाम से आए, मैं आत्मा बाबा के साथ थी और सृष्टि की शुरुआत में सत्युग के पहले बाबा से छुट्टी लेकर के, जैसे बाबा कहते हैं ना कि भाई तुम ही मेरे से पहले पहले बिछड़े हैं, तो हम जैसे आए सत्युग में आए है ना, फिर वापस गए ही नहीं। आप सोचिए, तो सोचा कि जैसे हम आए नीचे सत्युग में आए, तो आए फिर एक जन्म सत्युग में आए अर्थात पृथ्वी पर आए, है ना। ये बहुत बड़ा रंगमंच है पृथ्वी, पृथ्वी को सोच सकते हो ना, है ना, सोच सकते हैं, गोल है पृथ्वी, पृथ्वी गोल है और हम सब कहाँ कैसे रहते हैं, पृथ्वी से अटैच रहते हैं, ऊपर 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 ऊपर, आप सोच सकते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, पृथ्वी गोल है और हम उसकी धरती पर ही रहते हैं, किस किस आधार पर, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर हम सब जैसे कि लगे हुए हैं, और क्या अस्तित्व है, कितने छोटे छोटे हैं पृथ्वी के हिसाब से, पांच तत्वों के हिसाब से। और फिर हमने क्या किया कि आए एक शरीर में प्रवेश किया, वो पार्ट प्ले किया, परमधाम दूर है, वहां से हम आए इस दुनिया में आ गए तो आ गए बस, फिर एक शरीर में प्रवेश किया, वो पार्ट पूरा किया, फिर तुरंत दूसरे शरीर, पार्ट पूरा किया फिर और तीसरे शरीर, तो फिर ये सोच रहे कितना टाइम हो गया, परमधाम से आए हुए अपने घर से, घर में आए, घर से आए हुए फिर वापस ही नहीं गए हम, है ना। तो हमें व्यक्तिगत रूप से अपने पार्ट को, व्यक्तिगत रूप से अपने, इसलिए बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र को बाबा क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र में अपने आप को देखने से, सृष्टि चक्र का अपने आप में चिंतन करने से नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है ना। स्टोरी तो कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि सत्युग था, फिर त्रेता आया, सत्युग की ये विशेषता है, त्रेता की ये विशेषता, द्वापर की ये विशेषता, कोई भी कह सकता है, पर मैंने कैसे कैसे पार्ट बजाया, मैं सत्युग में हूं तो क्या हूं, कैसे हूं, क्या फीलिंग है, त्रेता में हूं तो क्या हूं, कैसे हूं, क्या फीलिंग है, द्वापर में आए तो क्या हुआ होगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है कि जितना हमें अभी देही अभिमानी बनने में मुसीबत लगती है, उतना भी देह अभिमान बनने में भी मुसीबत होगी, हम इतना जल्दी देह अभिमान में नहीं आ सकते हैं, एकदम आत्मा अभिमानी में होंगे तो देह अभिमान एकदम थोड़ा आएगा, है ना, कैसे धीरे धीरे आया होगा। शायद मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद पहली बार हमने अपने ही शरीर को टच किया होगा और हमें लगा कि हाँ देह भान शुरू, पहले वो भान ही नहीं होगा आत्मा को, पर फिर धीरे 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 शुरू होता है। तो ये क्यों सोचना है कि जितना हम आत्म रूप में सोचेंगे, हम 84 शरीर को, 86 शरीर को, 82 जिसका जितना है, उतने माँ बाप को, उतने संबंधी के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस जन्म के देह से हम न्यारे हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसीलिए इस बात के चिंतन की आवश्यक, गहराई से चिंतन, शांति से बैठ करके अपने आप के बारे में चिंतन, जो हम कहते हैं भी आपको जो टाइम मिला है टाइम चाहिए इन सब बातों के लिए, क्या चाहिए? टाइम। आप 15 मिनट आए योग करके चले गए, आधा घंटा आए योग करके चले गए, कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं। इसलिए आपको जो अभी टाइम मिला है, जो बाबा कभी कभी कहते तुम्हारे गोरख धंधे से छूट के आए हो, उसको बाबा गोरख धंधा कहता है। किसको? सब गोरख धंधा है, समझा? खाना पीना उठना बैठना नींद करना सब गोरख धंधा। क्यों गोरख धंधा है? क्योंकि वो देह के संबंध में है, और वो कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय निकाल करके बैठ करके गहराई से, कई लोगों को लगता है कि ये तो पहला लेसन, क्या है इसमें सोचने का, पर वो ही नहीं पूरा हुआ है, वो ही नहीं पूरा हो, है ना? तो पहली बात ये है कि अगर हमें इस इतना डिफाइन करने में, शब्दों का यूज करने में तो हम सभी बहुत माहिर है ना? कोई भी को किसी को भी कहूं तो फरिश्ता क्या होता है उसका वर्णन आधा घंटा बैठ के कर सकता है, पर मुझे अगर ये कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, मुझे ये जागृति डेवलप करनी है कि देह से मेरा रिश्ता नहीं है। अब तो हमारा सारा रिश्ता देह से ही है, क्या कहेंगे? है कि नहीं है? है नहीं है? ऐसा भी कोई बोलो कि नहीं मेरा कोई देह से रिश्ता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कोई तो होगा। पर बहुत करके आप सोचिए, बहुत करके हमारा जो चिंतन चलता है ना, हम क्यों नहीं आत्मा अभिमानी बनते हैं? मतलब मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है, क्यों? क्योंकि स्थिति का आधार जो है, कॉन्शियसनेस का आधार, स्थिति का आधार तो संकल्प ही है, विचार ही है। तो सुबह से लेकर के रात तक या दिनों दिन रोज हमारे ज्यादा से ज्यादा विचार किस बात में चलते हैं? देह के बारे में, देह और देह के संबंध और देह के पदार्थ। कलयुग भूल भुलैया का खेल है ना? बाबा कहते छीछी दुनिया है। कलयुग को क्या कहता है? छीछी दुनिया। छीछी दुनिया अर्थात क्या? छीछी किसको कहते हैं? छोटे बच्चों को, ये छीछी है, इसको टच मत करना, है ना? हाथ में लगता है, चिपकता है, छीछी अर्थात चिपकता है। तो इस दुनिया में जो मन को चिपकता है वो छीछी है। कलयुग की दुनिया में सब कुछ ऐसा है, मैं आपको बताऊं, है ना? पदार्थ, पदार्थों का भी इतना आकर्षण, इतनी वैरायटी, जो न चाहते हुए भी। अब देखो हम लोगों ने तो व्हाइट ड्रेस पहना है, कभी कभी हम हंसते हैं आपस में कि हमें व्हाइट ड्रेस है, हमें क्या मैचिंग फैचिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर तो भी बहने प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? कहते ये बहने, हमारी जो छोटी बहने वो जरा ज्यादा कॉन्शियस होती है, ये मैच नहीं होता है, चलता है मैच, कौन देखने वाला, अपने को कौन देखेगा? कोई नहीं, 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 मैचिंग तो होना ही चाहिए, हम आपके साथ आते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो आपको तो ठीक से मैचिंग। अब है व्हाइट तो भी मैचिंग, व्हाइट व्हाइट कपड़ा है तो भी कितनी वैरायटी दुनिया में है, आप देखो। बाकी कलर की तो बात ही मत पूछो, माथा ही खराब। वस्तु पदार्थ आप देखो, पदार्थ आज हर 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 बात में इतनी वैरायटी। इसलिए मैं कहती हूं कभी कभी कि शब्द बदल गया है। पहले के जमाने में था कि जो आवश्यक होता है उसके लिए हम बाजार में खरीद करने के लिए जाते थे, तो कोई जाएगा तो बोलेगा मुझे ये खरीद कर, सब्जी खरीद करने जाता हूं, है ना, कपड़ा खरीद करने जाता हूं, या बर्तन की आवश्यकता खरीद करने जाता हूं, ऐसा कहते थे। आजकल शब्द क्या हो गया है? शॉपिंग। क्या शॉपिंग करने जाते हो? पता नहीं, जो मिलेगा वो ले आएंगे, है ना? तो मार्केट वाले भी कोई कम है क्या? उनको पता चल गया कि ये लोग ऐसे हो गए हैं तो अपन भी ऐसा कुछ न, बिल्कुल निकम्मी चीज है वो भी बेचो। कुछ बात में मेरे को बर्तन मिलते थे पहले समझो तांबे के, पीतल के, फिर स्टील के आए, तब तक ठीक है, स्टील के बर्तन आए सबने बसा लिया। फिर कहते स्टील के बर्तन में तांबे का बेज, फिर कहते तांबे का अंदर से वो तांबे का बाहर के बाहर से बेज, तो लोगों ने एक बार बर्तन लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमारा विस्तार बढ़ता जाता है, हमारा भी कहने का भाव क्या है कि हम ब्राह्मण भी इसमें फंस जाते हैं। इसलिए छूटना तो मुश्किल, भूलना तो दूर रहा, पर हमारा ध्यान सारा दिन उसमें रहता है। ये फर्नीचर बनाया जाए, ये पर्दे लगाए जाए, ये फर्श बनाया जाए, सारा दिन हमारे जो विचार है वो किस संदर्भ में चलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। दिन में अगर हम 50,000 विचार करते हैं तो 50,000 देह के बारे में ही चलता है और आत्मा के बारे में विचार ही नहीं चलता है, तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या बनेगी, है ना? देहाभिमान में हम रहेंगे कि आत्माभिमान में रहेंगे, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा के बारे में सोचने के लिए समय निकालो। ज्ञान हमें है, पर जैसे बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्या कहते हैं, अपनी आपको इतने अच्छे अच्छे क्लास मिल रहे हैं, आपको अच्छा लगता होगा, पर नशा अपनी घोट तो नशा चढ़े। जिसने अपने आप चिंतन किया उसने आपको सबको बहुत अच्छे अच्छे क्लास कराया, आपको बहुत अच्छा क्लास, बहुत मजा है, पर सुनने का मजा है ना, ये तो मैं समझती हूँ आप यहाँ आए हैं तो जहाँ है वहां से कुछ स्टेप्स आगे बढ़ के जाना है। तो इसलिए पहली बात ये है कि हमें आत्मा के बारे में चिंतन करने के लिए समय निकालना है। मैं आत्मा हूँ, मैं पाठधारी हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चिंतन एक ये होता है, मैं अकेला आया हूँ, और इसको फील करना है। मैं जब आया तो कैसे, कहाँ से आया और कैसे आया इस दुनिया में, इसको फील करना है, महसूस करना है, और जाने की तैयारी। हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, फ्रेंडशिप बनाएंगे क्या किसी के साथ जाएंगे क्या, अकेले जाएंगे। तो मुझे ये महसूस करना है कि हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो कैसे जाएंगे, अकेले जाएंगे। समझो हम चले गए, हमने इस शरीर को छोड़ दिया और मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल गई, समझो ऐसा सोच सकते हैं, मैं निकली, निकली तो कहां जाऊंगी, निकली तो आत्मा कहां जाएंगी, हाँ? बाबा क्या कहते हैं, अंत मते सो गति, क्या कहते हैं, अंत मते सो गति। जो आत्मा के संकल्प है ना, अंत में अगर किसी को यह हुआ कि एक सुनाते हैं एग्जांपल किसी अपनी माता का ही, कि भाई अंत ज्ञान में चलने वाली माता, पक्का ज्ञान में चलने वाली माता, तो अंतिम घड़ी आई, किसी ने पूछ लिया कुछ इच्छा है, पानी पूरी खाना है, खत्म। अब कोई और चीज हो, पकोड़ा कहे तो तुरंत बना के भी व्यक्ति देवे, पानी पूरी कैसे बना के देवे, पर कहा अंतिम इच्छा, कहा कि पानी पूरी, तो वो पूरी करनी ही पड़ेगी, सब लोग समझते हैं। तो आखिर बाजार से वो पानी पूरी ले आए और माता को देने लगे कि बस अभी इच्छा नहीं है, नहीं खाई उसने खैर, और फिर अच्छी भी हो गई, मर भी नहीं गई, अच्छी भी हो गई। फिर इसको रियलाइज हुआ कि देखो अंतिम घड़ी में संकल्प क्या उठेगा क्या पता। इसीलिए बाबा कहते लंबे समय का अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास। आत्मा की गति का आधार विचार होता है, इसलिए कभी कभी मैं सोचती हूँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कोई छोटा, समझ ले कोई छोटा बच्चा होता है, तो वो कुछ मांगता है बाजार में, है ना, भाई ये दिलाओ, आपके नहीं देना, फिर उसको खींच के ले जाते हो, नहीं चलो अभी ये खाना नहीं है, तो उसके बहुत इच्छा हो, भले उसका मन वहां होगा, परंतु आप खींच के ले जाते हो घर, तो फिर बदल जाता है, वो भूल जाता है। तो अभी हम आत्मा शरीर में है तो अच्छा है पुरुषार्थ के लिए, अगर शरीर में नहीं है आत्मा तो फिर आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर सकती है। जो आत्मा का संकल्प होगा वही ठहरी रहेगी, किसी को खाने में इंटरेस्ट होगा तो किचन से बाहर आत्मा जा ही नहीं सकेगी, कैसे बाबा के पास जाएगी, किचन से निकले तो जावे ना, किसी व्यक्ति के साथ किसी का अटैचमेंट है तो वो व्यक्ति तो उसको नहीं देख सकता, नहीं बात कर सकता, पर वो आत्मा वहां से दूर नहीं जा सकती। तो इसीलिए हमें अभी लंबे समय का ऐसा अभ्यास करना है कि जैसे बाबा कहते हैं कि अभ्यास उसको कहा जाता है, शक्तिशाली मन उसको कहा जाता है, जो बाबा हमें मुरली में कहते हैं कि आप जहां चाहो जितना चाहो अपने मन को वहां लगा सको, उसको ही कहेंगे शक्तिशाली मन। तो पहली बात हमें ये करनी है कि भाई हमें स्वयं के लिए आत्मचिंतन का अभ्यास करना है, बार 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 बार। अब जब योग में बैठते हैं तो चिंतन के साथ बैठना है, ऐसे नहीं बैठे रहना है, लाल लाइट हो गई, गीत चालू हो गया, बैठे मजा आ रहा है, नहीं वो मजा वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है। हमें कंटिन्यूअस सतत ये पुरुषार्थ में रहना है कि मैं आत्मा हूं, और जो बाबा हमें सिंपल पुरुषार्थ, ये मेरी कुटिया है, ये शरीर को मैं चलाने वाला हूं, महसूस करने वाला मैं हूं, ये गहराई में सोचो। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो कहां जा रहा है, कौन सुन रहा है, नहीं महसूस करो मैं आत्मा हूं और ये जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कहां कहां जा रही है, मैं आत्मा है ना, वो कानों में नहीं है, आंखों में नहीं है, कहां आत्मा अपने आप को, वो जो बाबा कहते पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु, मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा में ही ज्ञान आ रहा है। जैसे एक दो बार बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात बताई, मैं ज्ञान सहित परम धाम में स्थित हूं, बहुत अच्छा पॉइंट, मैं ज्ञान सहित परम धाम में स्थित हूं, बाबा परम धाम में है परंतु ज्ञान सहित, वहां भी उनको सब ज्ञान है, आत्मा को परम आत्मा है पर ज्योति बिंदु आत्मा को। तो हमें मैंने देखा कुछ, वो देखा हुआ कहां मैंने नोट किया, आत्मा ने, तो उस समय महसूस करना है मैं आत्मा, मैंने सुना आत्मा ने, मैंने देखा आत्मा ने, तो वो बार बार जैसे बाबा का अनुभव तो साकार बाबा का आपने सुना होगा कि बाबा, मैं कभी कभी यही सोचती हूँ कि आप कैसे ऐसा बन गए बाबा, हम तो मुश्किल लग रहा है, आप इतना यज्ञ को संभालते हुए आप इतना अव्यक्त हो गए और आत्मा अभिमानी बन गए, नंबर वन बन गए, कैसे मम्मा और बाबा दोनों। तो चिंतन से, कंटिन्यूअस आत्मिक स्मृति से। अच्छा, अब दूसरा जो बताया कि भाई फरिश्ता अर्थात उड़ना, उड़ना है ना, उड़ना अर्थात उपराम होना, फर्श से तो हम नहीं उड़ेंगे परंतु मन से, मन को उपराम ले जा सकते हैं। तो आप सोचिए जब कोई एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन को क्या करना पड़ता है उड़ने के पहले, पहले स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर फास्ट चलता है और फिर ऊपर उठता है ना। तो उसी प्रकार जैसे बाबा में कह रहे थे कि बच्चे तुम्हें पहले कहते थे पुरुषार्थ करना है जरूर, फिर कहा तीव्र पुरुषार्थ, तुम दौड़ी पहनो पुरुषार्थ में, और फिर कहा उड़ो। तो हमारा कॉमन जो पुरुषार्थ है, हम कहते हैं कि जैसे यूजुअली सब क्या कहते, हम ज्ञान में चल रहे हैं, इतने समय से चल रहे, चलते अभी भी चलते ही है, चलने वाले व्यक्ति के लिए क्या, एक तो चलने वाला अच्छा है, जो बैठ जाता है उससे तो चलने वाला अच्छा है, क्योंकि जो बैठने वाला हो तो बेचारा पहुंचे गए, थक के बैठ गए, भाई चलो तो सही, उठो तो सही, उठाना पड़ेगा। तो जिनको पुरुषार्थ करने में अभी थकावट लग गई है, बस बहुत हो गया, अभी हम हमारे ज्यादा नहीं होगा, कई लोग ऐसे होते हैं, होते यंग है पर बातें ऐसे करते से बहुत बूढ़े हैं हमारे से नहीं होगा, अरे तुम्हारे से नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं, चलने वाले कम से कम, अच्छा अब बैठने वाले होंगे उसके पास तो बहुत लोग आएंगे, क्यों बैठे हो, हजार क्वेश्चन पूछेंगे लोग। तो जिनकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, कभी अगर किसी ने मूड ऑफ कर लिया है ना, तो उनको हजार लोग पूछने के लिए आएंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सबको जवाब भी देते जाएंगे और ध्यान भी जाएगा। इससे चलने वाला बंदा अच्छा है, उसके पास कोई आएगा नहीं। तो जब हम चलते हैं, पर चलने की जो स्पीड है, चलने वाला बंदा चारों ओर देख सकता है, इसको भी देखेगा उसको भी देखेगा, है ना। और कभी कुछ इंटरेस्टिंग बात हुई तो रुक भी जाएगा, कहते ना भी कोई खेल चलता है तो बीच में रुक जाता है, भूल जाता है मुझे कहाँ जाना था। तो जो हम आजू बाजू देखने की आदत अगर हमारी है, तो हम कौन सी स्पीड में है? चलने की स्पीड में। और चलने वाला उड़ नहीं सकता, वो पहुंच ही नहीं सकता है अपने स्थान पर, तो उड़ने की बात ही कहां। तो जिनको एक दूसरों को देखने की आदत है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, फलाना क्लास में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, रेगुलर आता है तो क्यों आता है, कई लोगों की आदत होती है हर बात में सोचने की आदत, तो वो हमारी स्पीड चलने की स्पीड है। जो जल्दी चलता होगा फास्ट स्पीड से, समझो आपको किसी रेलवे स्टेशन पे टाइम पर पहुंचना है, ट्रेन पकड़नी है, आपको रास्ते में कोई मिल गया, अभी अभी ना मेरे को जाना है जल्दी है, देखेगा ही नहीं, 10 लोग उसको पूछ के ना जाना है मुझे, तो उसका ध्यान किसी और होगा ही नहीं, एक ही ध्यान मुझे जल्दी टाइम पर पहुंचना है भाई। तो हमें भी क्या करना है, टाइम पर पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। तो हमारा ध्यान और कहां भी आजू बाजू ना हो, अने बाबा ने हमें उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है ना, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है, हर आत्मा के लिए ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा सबके लिए, मेरे लिए भी और सबके लिए भी। तुम इन जनरल संकल्प रखो मन के अंदर, सबका भला हो, सब सुख पाए। तो हमारी पुरुषार्थ की स्पीड क्या होनी चाहिए, ऐसी कि हम बाबा जैसे मैं कहते कि आप और किसी को मत देखो, किसी को मत देखो, खाली किसको देखना है, हमें अपने लक्ष्य को बाबा को देखना है, बाबा को देखना है बस। और उससे फास्ट स्पीड वाले जो होंगे है ना, वो इन बातों का अभ्यास करने के कारण, इन बातों को आदत बना देने के कारण धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पहले आदत थी हर एक को पूछने की, अभी तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, जो दो लोग वहां बैठ के बातें करते हैं तो मेरा ध्यान वहां, क्या बातें करते हैं, जब तक मैं जान ना लूं तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा, पता नहीं क्या बात करते हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा होगा, क्या कहा आपको, उसने उसको ही जरूरत समझा तो उसको कहा, मुझे क्या है, पर ये हमारा स्वभाव बन गया है। इस स्वभाव को हमें परिवर्तन करना होगा, लौकिक में भी, लौकिक घर में भी, लौकिक परिवार में भी, कई बार हमें ऐसे जानने को आता है कि भाई ये तो बंदा आपके ज्ञान में चलता है, पर तो भी हर बात को जानने के लिए उनकी उत्कंठा बनी रहती है, उनको कुछ ना बताएं तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे सब कुछ पता ही होना चाहिए, सब कुछ बताना ही चाहिए, ये आवश्यक है क्या, है ना। तो ये इसके लिए मन को तैयार करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमारी स्पीड पकड़ती नहीं है, हम बहुत रुकते हैं, यहां रुकते हैं, यहां रुकते हैं, यहां रुकते हैं, यहां रुकते हैं, स्पीड ही नहीं पकड़ते, फास्ट ही नहीं जाते हैं, तो उड़ेंगे कैसे। तो जब हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है पुरुषार्थ की, अर्थात इसको ये कहते हैं कि नॉन रिएक्टिव बिहेवियर है ना, हमें जहां आवश्यक नहीं है उन बातों में रिएक्शन नहीं देना है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने मेरे साथ क्यों नहीं बोला, आवश्यकता नहीं है तो क्यों एक्सपेक्ट करने का, एक आश्रम में हम देखने गए थे, वहां लिखा हुआ था बोर्ड पर जो आए उसको नमस्कार, जो नहीं आए उसको 100 नमस्कार, और जो कभी ना आए उसको 1000 नमस्कार। कहने ये सेंटेंस लिखा था, इसका मतलब उसकी वृत्ति को देखो आप, वृत्ति को देखने का, सोचने का कि उसको कोई ऐसी कोई लोग मुझे मिलने आवे, है ना? नहीं, ये वृत्ति बनाने की बात है। तो हमें ऐसी वृत्ति बनानी है अपने आप में, कोई मुझे बुलावे, कोई मुझे मान देवे, है ना, कोई मेरे साथ जावे, किसी के साथ मैं जाऊं, ये हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव है, उसको बदलना होगा। अगर हमें पुरुषार्थ में तीव्र गति को पकड़ना है तो इन सब बातों को हमें थोड़ा धीरे धीरे, जितना जितना आप करेंगे ना, करते जाएंगे। कई लोगों को मुझे कोई पूछता ही नहीं है वो अच्छा कि नहीं अच्छा, क्या कहेंगे, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा करके लोग रोते हैं, तो पूछता नहीं है तो बहुत अच्छा, क्या कहेंगे, ऐसा सोच सकते हैं, कोई मुझे पूछता ही नहीं है तो बहुत अच्छा, कोई नहीं पूछता है तो कौन पूछेगा, तो बाबा पूछेगा। आपके पास जब तक कोई पूछने वाला है तब तक बाबा निश्चिंत है, बहुत है इसको पूछने वाले, मेरे को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो स्वभाव को बदलेंगे तब हम बाबा कहते उस स्पीड को पकड़ सकते हैं। और उसके बाद जो कहते हैं कि भी उड़ने की बात है, टू गो बियॉन्ड, उड़ना, ऊपर उठना, ऊपर उठना, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। स्वभाव, पहली बात, ओके, जैसे बाबा ने एक बार सीजन में मूली में कहा था, क्या यूज करो शब्द, ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके, है ना, ओके अर्थात ओके है तो ओके कहना तो आसान है, पर कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा उल्टा सुलटा कुछ भी हुआ, पर स्वभाव क्या बनाना है, ओके, फॉरगेट एंड फॉरगिव। ओके कौन कर सकता है, जो भूल सकता है और क्षमा कर सकता है, चलो कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ओके, मैंने इसको इतनी मदद किया था और जब मुझे जरूरत हुई तो उसने मुंह मोड़ लिया, क्या कहेंगे, ओके, वाई नहीं, क्यों क्यों इसने क्यों नहीं, ओके ओके, मैंने बोला था आपको कि आप मेरा साथ करना, मुझे बुला के जाना, आप नहीं साथ किया, ओके। दादी जानकी प्रैक्टिकल में बड़ा अच्छा समझाती है और बोलती है, प्रैक्टिकल छोटी छोटी बातों में प्रैक्टिकल, दादी कहेगी कि अच्छा ये टोली लाओ, उसकी ब्राह्मणी को प्रवीणा, प्रवीणा ये टोली लाओ, थोड़ी देर हो गई नहीं लाई, ओके नहीं लाई कोई बात नहीं, ये नहीं कि भाई क्यों नहीं लाई क्या, और दादी का बहुत ऐसा है कि फलानी टोली ही लाने का, वो वहां लंदन से आई थी वो लाओ या अमेरिका वो लाओ, स्पेसिफिक दादी बहुत स्पेसिफिक है, तो समझो टाइम लग गया थोड़ा, ओके कहते ओके छोड़ो ना, चलो जो है वही दे देती हूँ, ओके। अब देखिए बात छोटी सी है परंतु आप वृत्ति देखो, ओके ओके करती तभी तो फरिश्ता बनी हुई है ना। तो हमें ये बात, लाइफ में बहुत कुछ बनता है, मैं आपको बताऊं, आपके घरों में परिवार में तो और बहुत ज्यादा बनता होगा, क्योंकि बेचारे कैसे, हम तो ज्ञान में वो ज्ञान में नहीं है तो कैसे उनका बिहेवियर सुधारेंगे, तो बहुत कुछ बनता होगा, परंतु क्या क्या स्लोगन रखना है, ओके। और किसी को भी, किसी ने कुछ हमारे साथ किया, अगर हमने महसूस कर रखा है कि इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, नहीं किया ना किसी ने, तो आपको पकड़ के रखेगा, आप वो भूल नहीं सकते हैं, आप बाबा की याद में बैठे होंगे ना, आंखों में आंसू आएगा, बाबा की याद में नहीं किसे कोई देखने वाला बेचारा सोच सकता है कि इसको तो बाबा की याद में आंसू बह रहे हैं, नहीं, परंतु महसूस होता किसने मेरे को कैसा व्यवहार किया, उसमें आंसू आएंगे, समझा। मन को पकड़ के रखता है, ये सब बातें जो है मन को पकड़ के रखती, इसीलिए लेट गो, जाने दो, जाने दो, कहते भाई जाने दो, चलो छोड़ो, जाने दो। ओके, लेट गो, फॉरगेट, फॉरगिव, ये सब हमें मुक्त करने वाले पॉइंट्स है। तब हम अपने बंधनों से, जब तक हम बंधन में है तब तक तो उड़ नहीं सकते हैं ना, उड़ नहीं सकते हैं। जैसे वो सागर में नाव को चलना होता है, चलने के लिए तैयार है, पर अगर वो रस्सी छोड़ना भूल जाए तो सारी रात चलाता रहेगा और वहां के वहां। तो हमें भी अगर उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी रस्सियों को, हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें बांध के रखते हैं, कोई हमें बांध के नहीं रखता, मैं आपको बताऊं, कोई बांधता है हमें नहीं, हम ही बांध के रखते अपने आप को, हमने रस्सी डाली हुई है। आज बाबा के यज्ञ में मैं आपको बताऊं, कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो रिटायर्ड है ना, आप में से कौन कौन रिटायर्ड है, हाथ ऊपर करें, बहुत कम है आप में, तो अच्छी बात है, पर रिटायर्ड जो होते हैं है ना, बच्चे रिटायर्ड हो गए हैं तो भी अपने आप को बांध के रखते हैं, मुझे घर में ये काम है, वो काम है, बच्चों की संभाल करनी है, और बच्चे क्या चाहते हैं, सच्ची बात है, ये जाए तो अच्छा, ऐसा सोचते हैं, और सामने से कभी कभी हमें कहते कि इनको बोलो ना वो आके यहाँ बैठे, यहाँ सेवा करे, ऐसा बोलो, हमें घर में जरूरत नहीं है, पर हमें लगता है कि हमारी बहुत जरूरत है घर में। तो वास्तव में रस्सी किसने बांध के रखी है, हमने बांध के रखी है, उन लोगों को, उन लोगों ने बंधन में नहीं रखा है, हम अपने आप बंधन में रहते हैं। तो इसीलिए इन बातों को सोचना होगा, इन बातों को सोचना होगा गहराई में अपने आप के लिए, आपको एकदम से तो अच्छा नहीं लगेगा। स्वतंत्र बनना, लोग बातें करते हैं पर उनको अच्छा नहीं लगता, निर्बंधन बनना अच्छा नहीं लगता, मैं आपको बताऊं, बातें करते हैं निर्बंधन की पर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमें अपने आप, जो बाबा कहते हैं कि बंधन है, उससे अपने आप को मुक्त करना होगा। तब हमारे चेहरे पर पूरा शरीर लाइट बनने का बाद में पहले चेहरा लाइट बने, लाइट अर्थात हल्का, विदाउट टेंशन। कईयों को यहां सलवटे पड़ी हुई होती है, नॉर्मली भी विदाउट टेंशन, तो कभी कभी कहते हैं ये सलवटे बंद करो ना, ये सलवटे अच्छी नहीं लगती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो भी ऐसे ही होगा चेहरा। तो सबसे पहला हमारे चेहरे पर लाइटनेस आवे, कब आएगी, बंधन मुक्त होगा तभी, अनेक बातों की फीलिंग से पर होंगे तभी, कोई भी फीलिंग हमारे चेहरे को टेंशन में ला देती है। चेहरे की जो लाइट है, हल्कापन है, पहली बात तो हल्कापन जो है वो हल्कापन लाने ही नहीं देती, व्यक्ति भारी हो जाता है। कहां भी अगर आपको खराब लगा, मूड ऑफ हुई, अच्छा नहीं लगा, तो चेहरा मुरझाया हुआ, तो चेहरे पर आप महसूस कीजिए, फील कीजिए कि मेरे चेहरे पर सदा मैं हर्षित मुख कब रह सकती हूँ। जो एक गीत में आता है कि योगी कौन है, जिसके लिए हर रंग अच्छा, जिनको हर रंग अच्छा लगता है, ये अच्छा ये नहीं अच्छा ऐसा नहीं, सब कुछ अच्छा। तो हमें ऐसा अपना स्वभाव बनाना होगा, है ना, अपने आप के लिए सोचना होगा। तो अभी आप जब योग में बैठे तो ये स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करना है, तभी हम अपने आप को देख सकेंगे कि हमें कहां अपने आप का परिवर्तन, कहां अपने आप का परिवर्तन करना है। तब गहराई से हमारी धारणा होगी, और जितनी हमारी गहराई से धारणा होगी तो अंतमते सुगति होगी। एक और हंसी की बात है, एक बार ऐसे हुआ, हमारे ज्ञान की एक माता ऐसे बीमार, हॉस्पिटल में बीमार थी, बहुत बीमार थी, तो आंखें बंद एकदम बीमार। उसका पति ज्ञान में नहीं चलता था, वही ज्ञान में चलती थी। तो उसके पति ने बोला कि, बुलाया कि आंखें खोलो, तुम आंखें खोलो। कहती मेरी तो कब से खुल चुकी है, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। है बीमार, मरने पर है। कहती मेरी तो कब से खुल चुके हैं, तुम अपनी आंखें खोलो, मेरी क्या खुलवाते हो। अब सोचो, ज्ञान, इसको कहते ज्ञान, देख बेद पर है, पर तो भी कहते मेरी तो आंखें खुल चुकी है, हम तो बाबा के बन चुके, तुम अपनी आंखें खोलो भाई, उसके पति को कहती। अब देखो, तो जो हमारी निजी धारणा होगी ना, वो हमें अंत समय भी मदद करती है। तो इसीलिए ये थोड़ी स्थूल बातें हैं, परंतु थोड़ा भी स्टेप आगे जाने के लिए हमें आवश्यक है। हम बातें उड़ने की करते हैं, पर अभी ऊपर ही नहीं उठे हैं तो उड़ेंगे कैसे, है ना। तो इसीलिए आज आवश्यकता तो ये है बाबा को कि मेरे सभी बच्चे फरिश्ते बन जाएं, है ना, फरिश्ते बन। जैसे आप सभी ने बताया कि फरिश्ता जो होता है वो उड़ता है, लाइट है, डबल लाइट है, डबल लाइट कहते हैं फरिश्ते को। तो ज्ञान, एक लाइट क्या है, ज्ञान। तो बाबा का जो भी ज्ञान है वो हमें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, हर कदम कदम पर, हर कदम कदम पर। तो बाबा ने जो धारणा हमें कही है, जो ज्ञान दिया है, वो किसके लिए दिया है, हमारे लिए। हमें निश्चित रूप से हमारे एटीट्यूड को, अभिगम को, हमारे व्यवहार को, वर्तन को, पहले हमें फरिश्ता कोई आकाश में ही मिलता है ऐसा नहीं है, पर हमें अपने घर में लोग महसूस करके ये फरिश्ता है, हमारे घर में, है ना। स्वर्ग कहाँ लाना है, है ना, सबसे पहले घर में, और घर से पहले मन में, है ना। तो इसलिए इन बातों को पहले मन से स्वीकार कीजिए कि हाँ, मुझे स्वभाव बदलना ही है। घर में कोई कैसा भी है, कैसा भी व्यवहार करता है, पर मुझे व्यवहार कैसा करना है, अच्छा, मुझे अच्छा व्यवहार करना है, इतना अच्छा करना है कि सामने वाले को महसूस हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, बाहर वालों के साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं, पर घर वालों के साथ मान के चलते कि इनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा। एक बार कोई प्रोग्राम था, विशेषता क्रोध के पर विजय कैसे प्राप्त करना है, एक बच्चे का फोन आया सेंटर पर कि आपका प्रोग्राम कितने बजे है। आवाज से पता चलता है छोटा बच्चा बोल रहा है। बोला, क्यों, आपको आना है क्या? नहीं, मेरे मम्मी पापा को भेजना है। आप सोचिए, कई पेरेंट्स अपना अनुभव कहते हैं कि बच्चे याद दिलाते हैं कि तुमको बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने क्या दिलाते हैं ना याद, बाबा ने क्या कहा है आपको, थोड़ा आप गुस्सा करेंगे, बोले बाबा ने गुस्सा करने को बोला है, कहेंगे। तो हमारी पहली परीक्षा हमारा घर ही है, परिवार ही है। तो वो वहां जब तक हम फरिश्ता, है ना, फरिश्ता क्या करता है, हंसी आती है ना, फरिश्ता अच्छा नहीं लगता घर में, अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा लगता है, क्या कहेंगे, फरिश्ता क्या करता है, हाँ, ब्लेसिंग देता है, हाँ, दातावन बांटता रहता है, ब्लेसिंग्स देता रहता है, सबको देता ही रहता है। पहली एक बात तो क्या है, फरिश्ता ने आगे कुछ मांगा ऐसा कभी सुना नहीं, यही सुना कि फरिश्ता आया, उसने हेल्प किया और चला गया, और चला गया, समझा। तो हमें भी क्या करना है, हम सहज भाव से बोल देते कमल पुष्प समान रहो घर में, पर हम रह नहीं सकते हैं, है ना। तो फरिश्ता बन के रहो मीन्स कि दियो, सबको दो, सबको देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और लेने की आशा मत रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उड़ वो सकता है, जैसे बाबा कहते हैं कि जब तक तुम्हारा यहाँ पर बंधन है तब तक आप उड़ नहीं सकते हैं, आपको कोई उड़ने नहीं देगा, उनका संकल्प भी आपको उड़ने नहीं देगा, आपका संकल्प भी आपको उड़ने नहीं देगा। तो यहाँ जो अपने बोझ को खत्म कर देता है, जो हल्का होता है, वो ही उड़ सकता है। और 84 जन्मों का हिसाब किताब कोई एक जन्म का थोड़ी है, 84 जन्मों का हिसाब किताब, उससे हम मुक्त हो जाए, हिसाब किताब हमारा चुकतु हो जाए, है ना। तो कैसा हिसाब किताब करना होगा, कैसे चुकतु करेंगे, समझो किसी को चुकतु करना है कि मुझे हिसाब किताब चुकतु करना है बस, तो कैसे करने का, आप देते जाओ, जिससे लिया उसको देते जाओ, है ना, और जिसको दिया हुआ है उसको माफ करते जाओ। जो हिसाब किताब चुकतु करता है वो क्या करता है, जिसको आपको देने का बाकी है उसको दे दो, और लेने का बाकी है उसको उसको छोड़ दो, क्योंकि लेना हमारे हाथ में नहीं है, सामने वाला बंदा देगा तो हम लेंगे ना, हिसाब किताब चुकतु होगा ना। तो क्या करते हैं व्यापारी भी ऐसा करते हैं ना, जो व्यापारी होगा उसको पता होगा कि मारवाड़ कहते कि चलो भूल जाओ, उसको हिसाब चुकतु हो गया, नहीं दिया तो भी छोड़ दिया और हिसाब चुकतु कर दिया। तो हमें भी क्या करना है, हिसाब चुकतु, और जिसको देना है उसको अवश्य उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। हम मन ऐसा विचित्र है कि जिसका लिया है उसको देने को भी दिल नहीं करता, समझा, दिल नहीं करता, देना है मुझे पता है तो भी दिल नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है, ज्ञानी माता की बात है, परिवार में कुछ ऐसा होता है, तो वो परिवार आए अपने डिफिकल्टी लेके, तो कहा कि भी हमारे घर में हमारी सास जो है वो भूत बनी है, कहती आती है बार बार मेरे पास आती है, कहीं तो इन लोगों की मान्यता होती है, पर कहा कि परेशान करती है। अच्छा, तो क्यों परेशान करती है, वो भी खुद अपने आप ही बोल रहे हैं क्यों परेशान करती है। तो कहती है कि मेरे पास आती है और मुझे ये कहती है कि मैंने 2 सोने की चूड़ियां दिया था, तो उसमें से 1 तुमको रखना था और 1 मेरी बेटी को देना था तुमको, बहू के पास आके कहती है, तो तुमने अभी तक दिया क्यों नहीं है। तो मैं कहा दे दो, सॉल्यूशन तो इजी है, दे दो, पर उसका देने को दिल नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं है, और किसी को पता नहीं है कि इसकी सास ने इसको 2 चूड़ियां दिया है और उसकी बेटी को देना है, उसकी बेटी को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता, पर सास को पता है, और वो फील भी कर रही है कि वो परेशान कर रही है, तो तुम देख के छूटो ना भाई। पर मन कैसा है, मन बड़ा विचित्र है, परेशान भी होते रहेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, आप सोचिए। तो ये आसान तो नहीं है, आसान नहीं है, इसके लिए बाबा की याद चाहिए। जो अंदरूनी ताकत की बात है ना, आत्मा में जो बल की आवश्यकता है, बाबा कहते योग से जो बल मिलता है, बाबा की याद से जो बल मिलता है ना, वो कौन सा बल, ऐसा बल जो आवश्यकता होने पर हम कुछ भी बातों को छोड़ सके, अपना परिवर्तन कर सके, अपना स्वभाव बदली कर सके, बातें करना तो इजी है कि अपकारी पर उपकार करो, कहना तो आसान है पर करना, करने के लिए अंदरूनी ताकत चाहिए। किसने मेरे लिए इतना खराब खराब बोला है तो भी जब मेरी बारी आई तो मैं उसके लिए अच्छा ही बोलूं, उसके लिए क्या चाहिए? अंदरूनी ताकत चाहिए। और वो ताकत के लिए बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करने की, खूब याद करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कहना आसान है फरिश्ता, परंतु इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? अपनी स्थिति को बहुत अच्छा की बात नहीं, सामान्य अच्छा बनाना है। ये तो कॉमन है ना, व्यवहार सुधारना, अपनी मन को अच्छा रखना, मूड को अच्छा रखना, वो प्राइमरी बात है, बेसिक बात है, प्राइमरी बात है। और फिर जो कहा कि भाई फरिश्ता अर्थात क्या है? अव्यक्त, अव्यक्त फरिश्ता कहते हैं ना, अव्यक्त अर्थात, अव्यक्त अर्थात, व्यक्त अर्थात बोलना, अव्यक्त अर्थात बोलना, अव्यक्त अर्थात, अव्यक्त अर्थात नहीं बोलना, बोलने का, बताने का जो भाव है वो भाव नहीं है, अव्यक्त है। अव्यक्त होने के बाद इशारों में ताकत आती है। जब व्यक्ति बोलता है तब तक इशारे से समझना मुश्किल है, जब कोई व्यक्ति मौन ले लेता है ना, और लंबे समय का मौन लेगा ना, तो उसके इशारों में ताकत होंगी। तो उसी प्रकार बाबा की याद के अंदर, जैसे हम बाबा को याद करते हैं, तो याद की जो पहली स्थिति है, अव्यक्त बनने के पहले जो स्थिति है, वो सबसे पहली स्थिति है चिंतन। जैसे पहले मैंने कहा कि आत्मचिंतन, तो जो बताया वो आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के चिंतन बाबा ने बताए हैं, तो वो चिंतन का अभ्यास, सारा दिन बाबा कहते चिंतन करो, ये भी आत्मा है, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, आत्मा के साथ कार्य कर रहा हूँ, आत्मा के साथ चल रहा हूँ, ये आत्मा का चिंतन सबसे पहला। आप योग में बैठते हैं तो भी क्या करने का? सबसे पहले चिंतन करने का, चिंतन करने का। जितना जितना आप चिंतन करते जाते हैं, आत्मा के बारे में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, उतना उतना और सब विचार हमारे खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ टाइम चाहिए, 10 मिनट में आप यहाँ वहां का सोचा और उठ गए, कुछ नहीं हुआ, पर 10-15 मिनट तक आपने कुछ न कुछ आत्मा का चिंतन करते रहे, बैठे रहे, तो मन इतना तकलीफ वाला नहीं है। अभी हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारा मन भी बेचारा थोड़ा अच्छा ही हो गया है ना, तो आप 10-15 मिनट बैठे तो मन ऑटोमेटिकली थोड़ा बाबा में लगने ही लगेगा, भटकना बंद कर देगा, यहाँ वहां की बातें सोचना बंद कर देगा। तो जितना आप चिंतन करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट चिंतन करेंगे, तो आपका मन ऐसा तैयार होगा कि आप बाबा के साथ बात कर सको। बाबा के साथ बात करने का, बातें करने का आदत डालनी है, आदत। कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, किसी ने किसी को बताने का हमारा दिल होता है, कोई भी बात अंदर में रहती नहीं है, समझो कोई को कुछ मिला तो भी किसी से बात करेंगे, कुछ हुआ अच्छा हुआ तो भी, अच्छा नहीं हुआ तो भी, कुछ लॉस किया तो भी, कुछ बहुत ज्यादा प्राप्ति हुई तो भी, बात। तो हमें क्या आदत डालनी है? बाबा से बातें करने का, हर बात में बात करने का। मुरली में बाबा ने क्या कहा वो भी बात करने का, कि बाबा आज आपने ऐसे कहा ऐसे कहा, आपका अगर कनेक्शन ठीक होगा है ना बाबा से, जितना बात करते जाएंगे क्या करेगा बाबा, रिस्पॉन्स देगा। मुझे याद है कि एक बार अव्यक्त बाप दादा मूली चला रहे थे और बाबा ने कहा बच्चों का किसी का योग लगता ही नहीं है। तो मैंने सोचा बाबा मेरा योग तो लगता है, ऐसा मेरे को लग रहा आप किसी का लगता ही नहीं, कोई पास नहीं सब फेल, ऐसा कैसा। फिर बाबा नेक्स्ट सेंटेंस, कोई कोई बच्चों का लगता है अच्छा, कैन इमेजिन। तो हमारा जितना हम बाबा से बातें करने के अभ्यास होगा ना, बाबा तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे और वो स्टेज पर हम टोली लेने कभी जाते हैं ना, तो टोली लेने जा रहे थे, लाइन में टोली में लगे हुए थे। तो फिर कोई बात करने, जब मेरी बारी आई तो बात करने लग गया बाबा किसी से, तो मेरे को ऐसी बात उसके साथ करता है, टोली मेरे को दिया। तो मैंने कहा बाबा ये ठीक नहीं किया तुमने, अगर देना था तो ठीक देना था, नहीं तो नहीं देना था। तुम सामने किसी के देख रहे हो और मेरे को टोली दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं किया आपने मन ही मन में। फिर कहने इमेजिन नेक्स्ट टाइम जब टोली लेने गए तो बाबा ने टोली दिया और सामने देखा, हाथ पकड़ा ऐसा ऐसा करके स्माइल किया। तो मैंने तो फील किया, पर दूसरी बहन जो मेरी पीछे थी क्यों कुछ खास था क्या बाबा ने आपको खास टोली दिया, मैंने खास ही था, झगड़ा ही हुआ था खास ही था। अब देखो तो ये होता है ना, बाबा से बातें करो तो बाबा को पहुंचती है ना। तो बाबा से बातें करने की आदत, हर बात बाबा को बताओ, जब योग में बैठते हो ना हर बात बाबा को बताओ। अच्छा अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो, किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बाबा को बोलो बाबा देखो इसने ऐसा किया, मैं तो अच्छा भाव रखती हूँ, मैं तो अच्छा व्यवहार करती हूँ, ये मेरे को ऐसा करता है ना। बाबा वाइब्रेशन देगा। हर बात बाबा को कहने की आदत डालने के बाद, बाद जब फिर हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा ने हमें बार बार समझाया है, बहुत बार समझाया है, अनेक बातों में समझाया है, हम समझ चुके हैं, है ना। फिर क्या होता है, एक समय कैसा आता है, बाबा के पास जाते हैं पर नो कंप्लेन, सब समझ गए हैं, हो तो सब कुछ रहा है ना कुछ तो होता रहेगा, अंत तक होता रहेगा, पर अब समझ गए हैं, बाबा ने सब कुछ समझा दिया है, बस बाबा की याद में गए, बच्चे कुछ बोलना है बस बाबा, कुछ तकलीफ है अव्यक्त, बोलने को कुछ रखा नहीं है, समझा। इसको कहते अव्यक्त भाव, व्यक्त करने को कुछ रहा नहीं है, ऐसी मन की स्थिति बन गई है ना। कोई ने कहा तो अच्छा, नहीं कहा तो अच्छा, बुलाया तो अच्छा, नहीं बुलाया तो अच्छा, मान दिया तो अच्छा, फिर नहीं मान दिया तो अच्छा, अपमान किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा अगर मन की स्थिति बन जाती है तो आपके पास किसी को कहने की कुछ बात होगी नहीं। जो हमारा मन भटकता है ना, इसको बात बताऊं, इसको बात बताऊं, इसको बात बताऊं, नहीं, हम सब कुछ समझ गए हैं, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता हमें नजर नहीं आती, लगती नहीं है, इसको कहते हैं अव्यक्त। खाली मौन रहने को अव्यक्त नहीं कहते हैं। अब किसी के पास दिल खोलने की आवश्यकता खत्म हो गई, क्या हुआ, किसी बाबा के सिवाय किसी के भी पास दिल खोलने की आवश्यकता खत्म हो गई, इसको कहते हैं अव्यक्त। और ऐसी जब स्थिति बनेगी तो आप यहां वहां देखेंगे नहीं, आपकी तुरंत बाबा के साथ बुद्धि लग जाएगी, है ना। जो हल्का होता है वही आना जाना कर सकता है ना, पहले तो आना जाना करे और फिर उड़े। अगर हमारी स्थिति ऐसी होगी तो हम एवर रेडी, बाबा के बुलावे पर एवर रेडी रह सकते हैं, बाबा ने जो कहा उसमें जी हां कर सकते हैं, स्थिति अच्छी होगी तब ना। तो इसीलिए हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है तो बाबा हमारा उपयोग, उपयोग किसको करना है, बाबा को करना है। हमारे में तो उड़ने की ताकत नहीं है, उड़ेंगे थोड़ी, परंतु हमारे मन की स्थिति इतनी अच्छी होगी बाबा के पास पूरा प्लान है किसको कहाँ यूज करना है, किसको कहाँ यूज करना है, तो हमारी स्थिति अच्छी होंगी तो हमारा एज इट इज बाबा हमारा उपयोग कर सकते। जैसे बाबा कहते हैं ना कि भाई क्या आपको दुख दर्द की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, तो आप सूक्ष्म रूप से अर्थात मन से कहां पर भी पहुंच करके आप उनको जो भी ज्ञान समझाना है, सुनाना है, कहना है, तो आप तब कर सकते हैं जब आप बाकी सब बातों से फ्री होकर उसी बात पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। तभी योगदान का छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। अपना जो कच्छ भुज में जब भूकंप हुआ था 2000 में, तो जबरदस्त हम लोग वहां साइट पर भी गए थे 15 दिन सेवा में, पर बाद में भी एक वहां ऐसा हुआ था कि जो आपको पता होगा स्कूल में 400 बच्चे 26 जनवरी थी प्रोसेशन में जा रहे थे और भूकंप में सारे बच्चे मर गए। तो जैसे हम बाबा के याद में योगदान में जाते हैं तो वहां जाकर के मैंने उस सभी आत्माओं को जैसे मैं सकाश दे रही हूँ, तो बच्चे पूछने लगे कि हमारा क्या दोष है, क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, हम तो छोटे बच्चे हैं, इतने बच्चों के साथ हमारा कैसे हुआ, तो क्यों क्या का एक जबरदस्त एटमोस्फियर होगा वहां पर, है ना। तो जैसे फिर हम उनको समझाते कि देखो आत्मा रूप में, फिर बच्चों के रूप में नहीं परंतु आत्मा रूप में, तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तुम्हारा इतना ही पार्ट था, पार्ट पूरा हो गया, बस अभी तुमको दूसरा पार्ट बजाना है। तो वो हम कब कह सकेंगे, जब हम बाकी सब बातों से मुक्त होंगे। तो इसको कहते हैं कि आप सूक्ष्म रूप से जाओ फरिश्ता बन के, फरिश्ता अर्थात लाइट और ज्ञान दोनों बात, मन से हल्का और ज्ञान दोनों बात होगी तो आप जहां चाहेंगे वहां स्पष्ट रूप से पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए बाबा को भी बहुत आवश्यकता है कि मेरे बच्चे क्या बन जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत आवश्यकता है। जैसे बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि क्या तुम्हें अपने भक्त की पुकार सुनाई नहीं पड़ती है, बाबा ऐसा कहता है तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि आपके भक्त होंगे, जिनको लगता है कि मेरे बहुत भक्त है वो हाथ ऊपर करें, बाकी सबके भक्त है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। बाबा ने आपको चुन चुन करके अपना बनाया, वो किस लिए बनाया है, देवता बनने के लिए बनाया है कि नहीं बनाया है, तो कौन कौन समझते मेरे भक्त बहुत हाथ ऊपर करे, भाई सबके भक्त है, किसी के नहीं है ऐसा नहीं है, सबके हैं, है ना, कोई के 100 होंगे, कोई के 1000 होंगे, कोई के 1,00,000 होंगे, पर होंगे तो जरूर। तो मतलब कि आप इस विश्व के अंदर हमारी बहुत जरूरत है, बाबा की बहुत अपेक्षा है, छोटी छोटी बातों को छोड़ देना है, छोटी छोटी बातों में हमें अपने मन को भारी नहीं करना, भारी करेंगे तो उड़ नहीं सकते, इसलिए हल्का रखना है। तो छोटी छोटी बातों में मन को भारी करना है कि नहीं करना है, पक्का खाना ठीक से नहीं मिला तो तो इसीलिए तो ये छोटी छोटी बातों को पहले ध्यान रखेंगे तो हम बाबा के कहे अनुसार फरिश्ता बन करके उड़ सकते हैं और बाबा की सेवा में उपस्थित रह सकते हैं, है ना। ओम शांति।
ओम शांति। आपने सुना होगा छुपा रुस्तम गुदड़ी में लाल, सभी ने सुना ये, तो ऐसे ही हमारे आदरणीय रंजना दीदी जी की 3 दिन से हमारे साथ हैं और शायद हमने सोचा नहीं होगा कि इतना सहज रीति से सभी उड़ने लग गए ना, है पंख लग गए सभी को, है ना। योग के लिए सहज आत्म चिंतन करो, पहले देह से बंधे हुए हैं और देह से छूटने की बातें, देह से छूटने का भी सहज विधि और हर बात में हल्के रहने के लिए ओके ओके, दो ही बातें हैं और दो बातों में ही फरिश्ता बना दिया, है ना। तो इसलिए रंजना दीदी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हम सबको, इसलिए रंजना दीदी जी ओम शांति, अभी दो मिनट बैठेंगे बाबा की याद में फिर।